समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास, और इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो अथर, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट अथर सईद, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया।
Prime Minister terms NDA alliance as the most successful in India's history, says it is committed to the basic spirit of nation first.
Rahul Gandhi ko Karnataka BJP dwara dayer manhani mamle mein zamanat mili.
RBI keeps repo rate unchanged at 6.5%, raises GDP growth forecast to 7.2% for the next fiscal year.
और कुश्ती में भारत के अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता।
एंड इन द फ्रेंच ओपन टेनिस मेन सिंगल सेमीफाइनल मैचेस टू बी प्लेड दिस इवनिंग इन पेरिस। एंड नाउ अतहर, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेडलाइन इंडियन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन June 7, दैट इज टुडे, विद थीम्स एड्रेसिंग प्रेसिंग कंसर्न्स रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। Despite the copious laws regarding food safety standards, findings show that an average of 1,600,000 people get sick due to unsafe food infected with bacteria, viruses, parasites or chemical substances every day. The statistics are alarming and prove the necessity of bringing attention to the relevance of Food Safety Day and its principles, and this day raises awareness about the importance of food safety. This year the focus is on ensuring that food prepared in every household is safe and healthy to consume. As home cooking becomes more popular, understanding and implementing food safety measures is crucial to prevent foodborne illnesses.
अभिषेक, इस क्रम में पहला सवाल मेरा आपसे है कि क्या आप खाने के लिए जीते हैं या फिर जीने के लिए खाते हैं?
वेल, जीने के लिए खाते हैं ऑफकोर्स।
जीने के लिए ही खाना चाहिए, जो कि खाने में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। आजकल चूंकि हम देखते हैं कि हर उत्पाद में आज मिलावट नजर आती है, नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य वस्तुएं जो हैं सुरक्षित हों, असली हों, पौष्टिक हों और जैविक हों, यानी ऑर्गेनिक हों। भारत में आजकल हम देखते हैं मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अभिषेक पौष्टिक और स्वस्थ आहार का सेवन बहुत जरूरी है, और इससे भी जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों का सेवन करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और डाइटिशियन अभिषेक कहते हैं कि जिस तरह से खाने पीने की चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं कि हर चीज में मिलावट है। आज दूध, हम कहते हैं दूध में मिलावट है, शहद में मिलावट है, मसालों में मिलावट है, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम मिलावट के जो खतरे से कहीं ना कहीं हम बाहर निकल रहे हों। इससे हमें बचना है तो कई प्रकार के रसायनों का इसमें इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव जो रासायनिक कलर होते हैं, रंग होते हैं, उनका इस्तेमाल जाता है, और इससे कई तरह की शरीर को गंभीर रोग और परेशानियां उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो जाता है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों के मिश्रण या फिर उच्च गुणवत्ता वाले तत्वों की जगह सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल कई तरह के रोगों का जोखिम बढ़ाने वाला हो सकता है, और इन्हीं विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने और खाद्य सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने यानी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, जैसे कि आपने भी कहा, हर साल आज के दिन यानी 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अभिषेक, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की शुरुआत यूएनओ ने खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए की थी। यूएनओ की जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूड सेफ्टी डे मनाने का फैसला किया और इसके लिए 7 जून की तारीख तय की। 7 जून 2019 को पहली बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया और उसके बाद से इस दिन को हर साल मनाने का क्रम शुरू हो गया। अभिषेक, खाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाना बनाने में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाना खाते हैं, लेकिन खाना बनाते समय यह सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भोजन ठीक से पका है या नहीं है, और उचित खाना पकाने से सभी कीटाणुओं और जो खतरनाक सूक्ष्म जीवी होते हैं उनको जो मारने में हमें सफलता मिली है कि नहीं मिली है। कई बार हम अतपका खाना खा लेते हैं।
Yes, Athar, and each year the day puts forth specific themes highlighting the relevant challenges pertaining to food safety. And the theme of this year, 2024, is Food Safety, Prepare for the Unexpected, which according to the WHO emphasizes the significance of being ready for food safety incidents regardless of the severity. And having access to a sufficient amount of safe food is a key to maintaining a good life. And consuming food that is contaminated can lead to various foodborne illnesses. Food safety can be defined as a way to store, prepare, consume and deliver food in such a way that it can maintain proper nutrition and good health. And food safety also prevents the development of bacteria, which can lead to severe illnesses. So let's talk a bit about food poisoning, Athar.
Yes.
Food poisoning, also called foodborne illness, is irritation or infection of the digestive tract. Mm-hmm. It is commonly caused by bacteria, viruses and parasites in food and beverages. Symptoms of food poisoning commonly include nausea, vomiting, abdominal pain and diarrhea that can be managed at home. However, more severe symptoms like blurred vision, paralysis and dehydration require immediate medical treatment. So let's also quickly look at some ways in which we can prevent food poisoning. Like you were saying, keep clean always. Separate raw and cooked food, cook thoroughly, keep food at safe temperature, and use safe water and raw materials. So these are 5 ways by which you can keep yourself and your family safe from food poisoning.
कई बार हम सस्ते के चक्कर में कच्चे फल ले आते हैं, पके हुए फल ले आते हैं, ज्यादा पके हुए फल ले आते हैं, खराब होने वाले फल ले आते हैं, लेकिन कई बार हम उसके अंजाम से बिल्कुल बेखबर रहते हैं किस तरह से, जैसे कि आपने जिक्र किया, फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। पानी की बात अगर हम करें तो पानी हम कहीं का पानी पी लेते हैं और कभी भी पानी पी लेते हैं, प्लास्टिक की बाटल से पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बाटल में वैसे भी नुकसानदेह होता है। और ये सुनिश्चित कर लें कि खाद्य सुरक्षा के जो मानक हैं उन मानक को पूरा करते हुए वो उत्पाद बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। हर एक पानी की बोतल को खरीद कर पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खराब पानी आप पियेंगे तो आप लीवर और किडनी से रिलेटेड बहुत सारे रोगों को आप जन्म दे देंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि साफ पानी होना चाहिए। फल या सब्जियों को हमेशा साफ पानी से धोने के बाद उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये उन पर लगे रसायनों और गंदगी को धोने में मदद करता है। आपको याद होगा कोविड का एक दौर था तो उसमें हर चीज को हम धो के, बहुत ज्यादा धो और साफ करके हम कंज्यूम करते थे। हम नमक में धोते थे या फिर हम बेकिंग सोडा में उसको धोने के बाद फिर इस्तेमाल करते थे। तो वो सारी आदतें हमने क्यों छोड़ दी, एक बार फिर अपनाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी फल को कटा फटा नहीं लेना चाहिए, सब्जी को पुराना नहीं खरीदना चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो है हमारे जीवाणुओं का केंद्र है, लाखों अरबों कीटाणु जीवाणु वहां पर पलते हैं, उसकी सफाई की तरफ हमें ध्यान नहीं जाता है। हम अपने कपड़ों को तो साफ रखना पसंद करते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर को कई महीने तक साफ करने की हम परवाह भी नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि उसको भी हम साफ रखें। और आजकल जैसे गर्मी है, गर्मी में बहुत ज्यादा ताजा खाना हमें खाना खाने की जरूरत है।
Yes, absolutely. So to conclude our discussion, Athar, this day is celebrated annually on June 7th, that is today, to raise awareness about food safety, celebrate achievements and promote ongoing improvements in food safety practices, and by engaging stakeholders from various sectors, World Food Safety Day strives to build a safer food future for all. So, Athar, unadulterated food is the foundation of a strong society. Let's raise awareness and take action to ensure food safety for all.
बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक। चलते चलते मैं भी कह दूं कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य जो थीम इस वर्ष की है उस पर खरा उतरते हुए हमें साफ भोजन करना है, सही समय पर भोजन करना है और मिलावटी भोजन से हमें बचना है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। और इस क्रम में पहले हम चलेंगे अपने मुंबई संवाददाता के पास। अभिषेक,
यस, इन द 18th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF 2024 इज ऑल सेट टू बिगिन फ्रॉम द 15th ऑफ जून। As the oldest festival for non-feature films in South Asia, MIFF attracts filmmakers from all over the world and promises to showcase an exciting lineup of documentaries, short fiction and animation films. Initiated in 1990 and now organized under the aegis of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, MIFF has evolved into an international event drawing cine enthusiasts from across the globe. We have more from a correspondent, Parthana, from Mumbai.
The 18th edition of Mumbai International Film Festival will be held from 15th to 21st June at the Films Division premises on Petter Road in Mumbai. Interestingly, parallel screenings will also be held in Delhi, Kolkata, Pune and Chennai, broadening the festival's reach to audiences across the country. These four cities will also witness dazzling red carpet events. With over 1,018 entries, the festival will see participation from 38 countries. Besides, a wide range of carefully curated selection of international films, MIFF 2024 will be holding the first ever documentary film bazaar comprising a work in progress lab, co-production markets and viewing room. A special animation and VFX workshop by a senior Warner Bros. Animator is also being organized. With an aim to foster a dynamic interaction between the established and emerging film directors, an array of curated events like panel discussions, open forums, fireside chat and masterclasses will also be held. Registration facility for media, students and delegates is now open. One can log in to the official website www.miff.in to set a date for an enthralling movie experience. Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
The NDA swept Assembly and Lok Sabha elections in Andhra Pradesh, bringing to the forefront the issue of Amravati, the proposed capital city of Andhra Pradesh, and a correspondent has filed this report.
Post-bifurcation of Andhra Pradesh in 2014, the ambiguity over the new capital city persisted. With the Telugu Desam Party making a comeback in the state, the proposed capital city of Amravati is back in the limelight. Between 2014 and 2019, under the TDP regime, the Amravati region buzzled with activity, with the regime procuring close to 33,000 acres to construct a new riverfront capital city. Later, with the proposal of the three capitals by the government led by YSR Congress Party, the idea of Amravati as the greenfield capital city took a backstage. All this is now changing. Telugu Desam Party Chief N. Chandrababu Naidu will be taking oath for the fourth time as the Chief Minister of Andhra Pradesh from Amravati, rekindling the hope that it would be transformed into a world-class capital city. The farmers of this region, who gave close to 33,000 acres under the land pooling scheme, have ended their five-year protest. They are now hopeful that their land will be used to construct a world-class capital city, which will act as a catalyst for growth in the state. Being proximity to Vijayawada and Guntur, the two major cities in Andhra Pradesh, the Krishna Riverfront capital, Amravati has the potential to become the nucleus of development in the state. Sri Sai for Parikrama from Vijayawada.
The Loka Kerala Sabha is an initiative of the Kerala government aimed at connecting Keralites all over the world, serving as a platform for its people from various walks of life to come together, exchange ideas and contribute to the development of the home state. The biennial event is scheduled to take place in the state capital, Thiruvananthapuram, from 13th to 15th of this month, and a Kochi correspondent has more details.
This is the fourth edition of the biennial event aimed at harnessing the collective potential of the several thousands of Keralites living outside the country. The three-day event brings together representatives from over 100 countries and from various states within the country. The participants will be selected from over 700 applications received so far. 200 persons will be invited as special guests. The Loka Kerala Sabha brings together representatives from different sectors such as business, academia, culture, arts, politics, etc. to deliberate on the key challenges facing the state and explore innovative solutions. The meet provides a forum for Keralites living abroad to voice their concerns, collaborate with policy makers and share their experiences. It plays a crucial role in promoting the state's rich cultural heritage and thus helping to foster a greater appreciation of its cultural diversity. The Sabha serves as a platform for networking, collaboration and exchange of knowledge among Keralites living in different parts of the world, thus creating opportunities for partnerships that can drive innovation and growth in their home state. Rajmohan, Akashwani News, Kochi.
India has added 2 bird sanctuaries from Bihar, Nagi and Nakti to the Ramsar sites list, taking the tally to 82. The newest wetlands of international importance, both man-made reservoirs situated in the Jhaja forest range of Jammu district in Bihar, were added to the Ramsar sites as part of World Environment Day. The 2 catchments feature dry, deciduous forests surrounded by hills. With the 2 sites, India now equals China in terms of Ramsar sites. Both countries have 82 recognized waterlogged ecosystems in the country. The UK, with 175, has the highest number of such sites, followed by Mexico, 144. Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 7th June 1893 in South Africa, Mohandas Karamchand Gandhi, then a young barrister, was on his way from Durban to Pretoria on behalf of his client named Dada Abdullah. When the train came to a stop in Pietermaritzburg, Gandhiji was ordered by the conductor to move from the first class carriage where he was sitting to the van compartment for lower class travellers. When Gandhiji refused, showing the conductor his first class ticket, he was evicted unceremoniously from the train.
Just what are you doing in this car, Puli?
I have a ticket. A first class ticket.
How did you get hold of it?
I sent for it in the post. I'm an attorney and I didn't have time.
There are no coloured attorneys in South Africa. Go and sit where you belong.
I'll take your luggage back, sir.
No. Just a moment, please. You see? Mohandas K. Gandhi, attorney at law. I'm on my way to Pretoria to conduct a case for an Indian trading firm.
Didn't you hear me? There are no coloured attorneys in South Africa.
Sir, I was called to the bar in London and enrolled at the High Court of Chancery. I am, therefore, an attorney. And since I am, in your eyes, coloured, I think we can deduce that there is at least one coloured attorney in South Africa.
Smart bloody kettle. Throw him.
Just move your black ass back to third class, or I'll have you thrown over the next station.
But I always go first class. I've travelled all...
A plaque on the platform marks the approximate spot where he was pushed from the train carriage with his luggage. This incident changed the course of his life, it reads. Talking exclusively to All India Radio News, Director, National Gandhi Museum, A. Annamalai, discussed the impact of the incident on Gandhiji's life.
When thrown off from the train, his image was scattered. He was in a big dilemma, whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi, but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred, as the birth of real Mahatma.
After the Pietermaritzburg incident, Gandhiji chose to peacefully oppose discriminatory policies, organizing strikes and marches to counter biased voting regulations and intolerable working conditions. Out of these beliefs emerged the concept of Satyagraha, which the Mahatma first employed in South Africa to fight against racial prejudices and then in India to fight against British colonialism.
Seventh June is also the death anniversary of Dundai Khan. He was in the service of the English East India Company Army, but left it and took part in the struggle for freedom from the foreign rule during 1857. He also led a group of rebels and attacked the British establishments for seizing their properties and arms. Caught by the company troops in the course of an encounter, he was accused of plundering, desertion and mutiny against the British Empire. He was sentenced to imprisonment for life with hard labour and iron in July 1857. He was transported from Bombay to the Andaman Islands in April 1858. Dundai Khan died while in captivity at Cellular Jail on the 7th of June, 1858.
We also remember Martyr Nishan Singh. Nishan Singh was a resident of district Shahabad, Bihar. He was a close associate of Kumar Singh and fought along with him in the battles of Jagdishpur, Jaunpur, Hajipur, Kanpur, Lucknow and Banda during the First War of Independence in 1857. He was arrested in his village and was mercilessly blown into pieces by cannon on 7th of June 1858.
In business news today, Indian benchmark indices closed higher for the third straight session, with Sensex touching a fresh all-time high following the RBI's decision to keep the benchmark repo rates unchanged. The 30-stock BSE Sensex, which had opened lower at 75,032, climbed in the afternoon session to touch its all-time high of 76,795 in intraday trades. At close, the Sensex was at 76,693, up 1,619 points, or 2.16%. Similarly, Nifty, which had also opened flat at 22,822, climbed to an intraday high of 23,320, only 18 points short of its all-time high. At close, the Nifty 50 was at 23,290, up 469 points or 2.05%. In the forex market, the Indian rupee ended at 83.38 rupees against the US dollar.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मैच आज शाम पेरिस में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अलकराज का सामना इटली के जेनिक सिनर से होगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रेड और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच होगा। कल महिला सिंगल्स फाइनल में पोलैंड की इगा स्वेतेक का मुकाबला इटली की जैस्मीन पाओलोनी से होगा। इस बीच भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। कल पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में इटली के सिमोन बोलेली और आंद्रे वावासोरे ने उन्हें 5-7, 6-2, 2-6 से शिकस्त दी। भारत के अमन सहरावत ने कल शाम हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता। फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अमन को जापान की री हिगुची से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-11 से हार का सामना करना पड़ा। इस रजत पदक से अमन को आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी रैंकिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात मेजबान अमेरिका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया। कल रात डलास के ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में इस बार के टी20 विश्व कप का पहला बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला टाई पर समाप्त होने के बाद अमरीका ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्मदिवस या जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। और इस क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे अपने समय के लोकप्रिय नर्तक नटराज रामकृष्ण को, जिनकी आज है पुण्यतिथि। वे आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे। वे एक विद्वान संगीतज्ञ भी थे। नटराज रामकृष्ण ने दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई को सम्मानित भी किया गया। मात्र 18 साल की उम्र में ही नटराज रामकृष्ण को नटराज की उपाधि दी गई थी। नटराज रामकृष्ण को 700 साल पुराने नृत्य रूप पेरिनी शिव तांडवम को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुचिपुड़ी को पारंपरिक नृत्य के रूप के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई।
एडवर्ड मॉर्गन फ्रॉस्टर पास्ड अवे इन दिस डे 1970। ही वाज एन इंग्लिश ऑथर बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स, पर्टिकुलरली अ रूम विद अ व्यू, Howards End and A Passage to India. After returning to London from India, he completed the last novel of his to be published in his lifetime, A Passage to India, in 1924, for which he won the James Tait Black Memorial Prize for Fiction. A Passage to India was adapted as a play in 1960, directed by Frank Hauser, and as a 1984 film directed by David Lean. He also wrote numerous short stories, essays, speeches, broadcasts, a limited number of biographies and some pageant plays.
और अब बात जन्म दिवस की, तो आज जन्म दिवस है अपने समय के बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का। वे उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का संदेश दिया। बॉम्बे क्रॉनिकल में ये लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है। ये कॉलम 1941 से 1986 तक चला। ख्वाजा अहमद अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य थे। अब्बास को पद्मश्री, गालिब पुरस्कार और फिल्म नीचा नगर के लिए अंतर्राष्ट्रीय कांस फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनकी बहुत ही उनके काम से सजी फिल्म थी आवारा, राज कपूर साहब की। उस फिल्म के एक गीत का मुखड़ा सुन लेते हैं अभिषेक।
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने 5 दशकों की अवधि में 73 से अधिक अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखी। उन्हें आज भी उर्दू साहित्य की एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता है। उनकी आत्मकथा आई एम नॉट एन आईलैंड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑटोबायोग्राफी पहली बार 1977 में प्रकाशित हुई और फिर उसके बाद 2010 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया।
यस, एंड डीन मार्टिन बॉर्न डिनो पॉल क्रोसेटी was born on this day. He was an American singer, actor and comedian, one of the most popular entertainers of the mid-20th century. He was nicknamed the King of Cool. Martin gained his career breakthrough with comedian Jerry Lewis, billed as Martin and Lewis in 1946. They performed in nightclubs and later appeared on radio, television and films. Let's listen in to his hit track, Mambo Italiano.
Mambo Italiano, hey, hey, Mambo. Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano. All you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey, Mambo. You don't want a tarantella, hey, hey, Mambo. No more mozzarella, hey, Mambo. Mambo Italiano, try an angelada with the fish, baccalà, and then hey, gumba.
आज प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्मदिन है। उन्होंने टेनिस में लिएंडर पेस के साथ युगल मुकाबलों में शानदार सफलता अर्जित की। भूपति को 1996 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया और 2001 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। टेनिस का खेल उनके परिवार के लिए कोई नया नहीं है। महेश के पिता भी टेनिस के खिलाड़ी और डेविस कप टीम के सदस्य रह चुके हैं। लिएंडर और महेश भूपति की जोड़ी ने 8 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 7 के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और फिर उसके बाद इस युगल जोड़ी ने 1999 में फ्रेंच और विंबलडन खिताब जीते। ग्रैंड स्लैम के पहले पड़ाव ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भी वो फाइनल में कड़े संघर्ष में हारे। महेश भूपति की अगर बात करें तो ऑल अमेरिका का एकल और युगल खिताब 1995 में उन्होंने जीता और अली हमदे के साथ जोड़ी बनाकर 1995 में एनसीसी की युगल चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती। 1996 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
विलियम जॉन नीसन और लायम नीसन वाज बोर्न ऑन दिस डे। ही इज एन एक्टर फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड। ही हैज रिसीव्ड सेवरल एक्लेड्स इंक्लूडिंग नॉमिनेशंस फॉर सेवरल अवार्ड्स। Neeson was appointed in 2000. Neeson made his film debut with Pilgrim's Progress, followed by early roles in Excalibur, The Bounty, The Mission, The Deadpool, and Husbands and Wives. He rose to prominence portraying Oscar Schindler in Steven Spielberg's Holocaust drama, Schindler's List, in 1993, for which he earned an Academy Award for Best Actor nomination. He played leading man roles in drama films such as Nell, Rob Roy, Michael Collins, and Les Miserables in 1998. And also Arthur Prince Rogers Nelson of Prince was born on this day. He was an American singer, multi-instrumentalist, songwriter, record producer and actor. The recipient of numerous awards and nominations, is widely regarded as one of the most excellent musicians of his generation. His music incorporated various styles including funk, R&B, rock, new wave, soul, synth pop, pop, jazz, blues and hip hop. Prince produced his albums himself, pioneering the Minneapolis sound. Let's listen in to his hit track, Play in the Sunshine, and it's from his album, Sign of the Times.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए अधहर सईद और अभिषेक मुखोपाध्याय को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार,
नमस्कार।